Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Giridhare Radha, Giridhare Radha, Jai Jai Jagannath, Jai Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra. Garanitai, Garanitai, Jaya Garanitai. Nittai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Shri Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namasritya. Naram Chaiva Narottamam. Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudhirayet Nashta Prayesha Badreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishikim. Srimad Bhagavatam Kandha 9 Ayah 15 Shlok Sankhya 26 Avirdhanim Rishe Darpat Naran Hartum Achodayat Te Cha Mahishmatim Ninyuho Tavatsam Kandantim Balat Avirdhanim Rishedarpan Avirdhanim Rishedarpan Naranantum Achodayat Naranantum Achodayat Tesha Mahishmati Ninyuho Tesha Mahishmati Ninyuho Tavatsan Krandatim Balat Tavatsan Krandatim Balat Tavatsan Krandatim Balat
Tavatsan
विद्वानि विषेदत्पान् रामन्त्रमचोदयत् एष महेश्वरीं निन्यो भवत्सान् सुन्दरीं बलात् नरान्हन्तमचोदयात् स्मतीं निन्यो बलात् दर्पान् मरान्हन्तुमचोदयत् स्मरीं निन्यो समर्थान् गन्धदीं बलात् अविद्वनीं विद्वान् कामधेनु को ऋषे है ऋषि जमदग्नि की दर्पक भौतिक शक्ति से गर्वित होने से नरान अपने सारे अतिथियों अपने सारे आदमियों खर्तुम चुरा ले जाने के लिए अचोदयत प्रोत्साहित किया ते वे च बी महिष्मतीम कार्तिवीर्यार्जुन की राजधानी में निन्यु ले आए स वत्साम उसके बछड़े समेत बलात् बलपूर्वक अनुवाद और तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की इच्छा अनुवाद भौतिक शक्ति से गर्वित कार्तवीर अर्जुन ने अपने व्यक्तियों को जन्म जमदग्नि की कामधेनु चुरा लेने की प्रोत्साहन की फलतः वे व्यक्ति रोती विलप्ती कामधेनु को उसके बछड़े के समेत बलपूर्वक कार्तवीर अर्जुन के राजधानी लियाए। तात्पर्य इस श्लोक में अविध्वनि शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है यज्ञ संपन्न करने के लिए हवि या घी प्रदान करने वाली गाय। मनुष्य को इस जीवन में यज्ञ संपन्न करने की शिक्षा दी जाती है, जैसा कि हमें भगवद गीता में सूचना मिलती है, यज्ञार्थात कर्मण्यत्र लोकोयम कर्मबंधनः। यदि हम यज्ञ नहीं करते तो हम इंद्रिय तृप्ति के लिए कुकरों सूकरों की तरह कठिन श्रम करते रहेंगे। यज्ञात भवन्ति भूतानि यज्ञात भवन्ति पर्जन्यः। यदि नियमित रूप में यज्ञ संपन्न होते हैं हो रहे तो मनुष्य निश्चित रूप समुचित वर्षा होती रहेगी और ठीक से वर्षा होने पर भूमि उपजाऊ होगी तथा जीवन की समस्त आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगी। अतएव यज्ञ आवश्यक है। यज्ञ के लिए घी चाहिए और घी के लिए गाय की सुरक्षा होनी चाहिए। इसलिए यदि हम वैदिक सभ्यता की उपेक्षा करेंगे तो हमें अवश्य ही कष्ट मिलेगा। तथाकथित विद्वान तथा दार्शनिक जीवन में सफलता के रहस्य को नहीं जानते, अतएव उन्हें प्रकृति के हाथों में पड़कर कष्ट सहना पड़ता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। इतने पर भी वे सोचते हैं कि सभ्यता में आगे बढ़ रहे हैं। अहंकार रूढ़ात्मा कर्ता मन्यते। अतएव कृष्ण भावनामृत आंदोलन उस सभ्यता को पुनर्जीवित करना है जिनकी हर व्यक्ति सुखी रह सके। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही उद्देश्य है। यज्ञे सुखे न भवन्तु, यज्ञे सुखे न भवन्तु। ओम अज्ञात विरंदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देहं श्री गुरौ स्युतापदकमलं श्रीगुरुन्मीष्टमांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणरिता शिशाकान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिका कांतराधा कांतनमोस्तुते दत्तकांचन गौरांगिराधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। वैसे आज जो क्लास था चंद को ड्रो का था, तुमने कहा कि गाय के बारे में तो आप ही बताएं। तो ये प्रसंग है परशुराम अवतार के विषय में। हमको मालूम है जमदग्नि जो परशुराम के जो पिताजी हैं उनके पास एक बहुत सुंदर गाय थी जिसका नाम है कामधेनु। जब कार्तिकेय अर्जुन जो रावण को भी उन्होंने ये कर दिया था, बंदी बना लिया था, हरा दिया था, इतने शक्तिशाली कार्तिकेय अर्जुन अपने सैनिकों के साथ शिकार कर निकल पड़े, तब जमदग्नि के आश्रम में पहुंचे तो जमदग्नि ने सारे राजा और अन्य जितने भी उनके साथ में थे सबको उन्होंने अच्छी तरह से खिलाया, सबको संतुष्ट किया। तो राजा जमदग्नि के संपत्ति को देख के आश्चर्यचकित हो गया। तूने सोचा इतनी संपत्ति जो है ये ऋषि का क्या काम का, व्हाट इज द यूज, क्या जरूरत है इस ऋषि को, ये तो आश्रम में रहने वाला एक भिखारी है, ब्राह्मण है। लेकिन ये जो संपत्ति है, ये गाय जो है कामधेनु, ये मेरे पास हजारों लाखों गाय है, उनके समान कुछ नहीं है। ये सारे गाय कुछ नहीं है उनकी, ये गाय के समान है, ये संपत्ति जो है मुझे चाहिए। ब्राह्मण का संपत्ति को हड़पने का प्रयास किया कार्तवी राज्य में। तो सबसे पहली बात है, इधर कार्तवी राजन एक राजा है, एक राजा को ब्राह्मण को दान देना चाहिए, राजा राजा का कर्तव्य बनता है। उल्टा राजा ने क्या किया, ब्राह्मण से इस गाय को हड़पने का प्रयास किया, लेने का प्रयास किया। तो ये कलयुग का लक्षण है, ब्राह्मणों की संपत्ति जो है उसके ऊपर राजा का हक नहीं होता है। भले शास्त्र में कहा गया है संपत्ति एक राज्य में संपत्ति राजा का होता है, क्योंकि राजा जो है वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। भगवान के प्रतिनिधि होने के नाते राज्य में प्रत्येक चीज राजा का होता है, वो कर वसूल कर सकता है। जैसे एक बादल जो है समुन्द्र का पानी को लेकर शुद्ध करके सब जगह बांटती है, उसी जगह राजा जब कर वसूल करता है उस धन शुद्ध होता है। लेकिन शास्त्र में कहीं भी वर्णन नहीं है कि राजा जो है ब्राह्मणों के ऊपर कर डाल सकता है। लेकिन अभी ऐसा परिस्थिति आया है, कलयुग है, कि हम देखते हैं कि पूरा जितने भी राज्य है या सरकार है वो ब्राह्मणों की संपत्ति को हड़पने की प्रयास कर रही है। अब देखिए पूरा भारत में जहां जहां मंदिरें हैं उन मंदिरों को लूटने के लिए अनेकों अनेकों योजना बनाए गए, अनेकों अनेकों एक्ट बनाए गए थे। वैसे वैसे उन भ्रष्ट लोगों का नाम लेना भी अच्छा नहीं है। एक था एक ब्रिटिश ऑफिसर, उसने अनेकों अनेकों लॉज बनाए। सबसे पहले लॉ उन्होंने बनाया था एंडोमेंट्स लॉ। तो एंडोमेंट्स लॉ जो है उसके अनुसार मंदिर की संपत्ति सरकार का है, तो मंदिर का संपत्ति सरकार का है, सरकार का उसके ऊपर हाथ होना चाहिए, इसलिए हम मंदिरों को हड़प लेंगे। दक्षिण भारत में आप जितने भी मंदिरें जाएंगे, बड़े बड़े मंदिर, कितने संपत्ति है आप गिन नहीं सकते, इतना संपत्ति है, और सरकार ने उसको हड़प लिया, अनेकों अनेकों कानून को डाल के उसको हड़प लिया। ये उस सरकार का सबसे पहला लक्षण है। जब भी ब्राह्मण यानी मंदिर की संपत्ति ब्राह्मण का होता है, जैसे एक क्षत्रिय का सरकार का नजर उस संपत्ति के ऊपर जाता है, वो समझ लीजिए उस सरकार का उसी समय पतन होता है। आंध्र का एक चीफ मिनिस्टर था, उनका नजर गया तिरुपति की संपत्ति के ऊपर, और वो स्वयं गया जाके सोचा कि इतना संपत्ति, इतना सोने की है वैभव, ये सब किसके लिए है। उधर का पुजारी ने कहा ये भगवान की पालकी है। उसने कहा मैं बैठना चाहता हूं, मैं इधर का राजा हूं, मैं इधर का चीफ मिनिस्टर हूं, मुख्यमंत्री हूं। तो पुजारी ने कहा नहीं हो सकता है। उसने कहा मैं तुमको देख लूंगा। एक हफ्ते के अंदर उस चीफ मिनिस्टर का मृत्यु हो गया। उसी मंदिर का संपत्ति हड़पने के लिए एक और एक योजना बनाया, और एक चीफ मिनिस्टर वो हेलीकॉप्टर में गया, वो सोचा कि मैं इधर कैसे इस संपत्ति को हड़प के राज्य को अनेकों अनेकों मेरी मतलबी कार्य बनाऊं। जिस हेलीकॉप्टर में उस संपत्ति को हड़पने के लिए गया वही हेलीकॉप्टर गायब हो गया, नाम और निशान नहीं रहा उस हेलीकॉप्टर का। तो ये नई बात नहीं है, ये सब परशुराम के समय से अनेकों अनेकों कालों से चलता आ रहा है। जब भी किसी व्यक्ति का भी अगर क्षत्रिय का खास करके किसी और का ब्राह्मण की संपत्ति के ऊपर नजर गिरा, उसको चुराने का प्रयास गिरा, तो समझ लीजिए उसका बर्बाद हो जाता है। अगर कोई अन्य ब्राह्मण अन्य भगवान की संपत्ति और अन्य ब्राह्मण की संपत्ति हड़पने का प्रयास किया, शास्त्र में कहा गया कुत्ता या बंदर बनता है। आपको फेमस स्टोरी मालूम है। तो उनका ही पतन होता है, मनुष्य जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो प्राप्त नहीं होता है। इसलिए बहुत बहुत सावधान होना चाहिए। अगर कोई चीज भगवान की है, ब्राह्मण की है, उसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। तो ये ब्राह्मण की वास्तविक संपत्ति क्या है? गाय है। समाज की वास्तविक संपत्ति गाय है। पहले जमाने में अगर कोई किसी को अपनी पुत्री को विवाह में देना चाहते थे तो पहले ये देखते थे उनके पास कितने गाय कितने बैल है। इसके बाद बहुत सारे, अच्छा दो बैल मेरी बेटी उनके घर में सुखी रहेगी, ऐसा उनका विचार था। लेकिन आजकल देखते हैं ये कितना बड़ा नौकर है, ये नौकरी कहाँ कर रहा है। जितना बड़ा कंपनी में नौकरी करता है उतना अच्छा व्यक्ति है, उतना संपत्ति है। लेकिन संपत्ति का वास्तविक मापदंड जो है वो गाय है। भगवान का ऐश्वर्य है गाय। भगवान की ही स्वयं, उनकी ही अंतरंगा शक्ति लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी निवास करती हैं कहाँ? गाय के पिछले भाग में निवास करती हैं। अभी आजकल बहुत जगह अनेकों अनेकों लोग दुखी है, आर्थिक समस्या बहुत है। लाखों रुपए कमाने के बाद भी आर्थिक समस्या है। पहले जमाने लोगों के पास पैसा नहीं रहता था, लेकिन आर्थिक समस्या नहीं रहती। आजकल लोगों के पास ऐश्वर्य है लेकिन आर्थिक समस्या है। पहले लोगों के पास आर्थिक समस्या नहीं थी और पैसा भी नहीं था। क्यों? क्योंकि उनके पास वास्तविक धन था गाय। तो कामधेनु गाय तो विशिष्ट गाय है, स्पेशल गाय है। अस्तित्व में सारे जितने भी गाय हैं उनको कामधेनु ही कहा जाता है। ऐसा नहीं कि यही गाय कामधेनु है, ये गाय दिव्यता दैवी लोक की गाय है। जैसे एक लोक है जिसका नाम है गोलोक, ये भौतिक जगत में भी गोलोक है जिसके अंदर केवल गाय ही गाय निवास करते हैं। अभी पृथ्वी लोक में जितने भी गाय दिखाई पड़ रहे हैं वो सब वो गोलोक में निवास करने वाले गायों के ही विस्तार है, एक प्रतिरूप है। आध्यात्मिक जगत में जो गोलोक हैं, जहां कृष्ण सुरवीर पालयंतम सुरवी गायों को जो पालन करते हैं, वो आध्यात्मिक जगत का गोलोक है। और भौतिक जगत में भी एक गोलोक है जिसके अंदर गाय ही गाय, उधर कोई और प्राणी नहीं रहता और कोई मनुष्य कुछ कोई नहीं रहता। उनमें से गायों में से एक राजा होगा, रानी होगा, जो भी है वह इस प्रकार पूरा गायों का ही बना हुआ लोक है गोलोक। उधर का एक सुरभि गाय को साथ में इंद्र लेके गया था। तो ये जो कामधेनु है जिसका वर्णन हो रहा है वो उस जगह का गाय, क्योंकि देवता लोगों ने ये गाय प्रदान किया था, इसलिए वो इस पृथ्वी के गाय जो प्रदान करती है उससे चमत्कारी चीजों को प्रदान कर सकती है। हमने कभी नहीं देखा कि गाय से सैनिक उत्पन्न होते हैं, गाय से सीधा अनेकों अन्न उत्पन्न होता है डायरेक्टली उनसे। गाय दूध देती है, अनेकों चीजें करती है, उससे बाकी सब उत्पन्न होता है। लेकिन दैवी लोक का गाय डायरेक्टली उत्पन्न करता है। गाय को हड़पने का जो प्रयास है ये पहली बार नहीं है, पुराणों में अन्य कथा है। विश्वामित्र और वशिष्ठ, विश्वामित्र भी जब गया था अपनी सेना को लेके, जो वशिष्ठ के आश्रम के गुजर रहा था, वशिष्ठ ने उनको अच्छे से स्वागत किया। अभी विश्वामित्र ने जो वशिष्ठ की जो कामधेनु है उसको हड़पने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कामधेनु के शरीर से अनेकों इतना सेना उत्पन्न हुई तो वशिष्ठ की सारे सेना को परास्त कर दिया और हड़प नहीं पाया। तब विश्वामित्र बहुत क्रोध आया, तो उन्होंने कहा वशिष्ठ के पास, मैं क्या करूं, मैं तपस्या करूं। तो विश्वामित्र ने अपने राज्य को त्याग कर दिया, मैं क्या करना चाहता हूं, वशिष्ठ जैसा बनना चाहता हूं। तो भक्तों की संपत्ति को देख के उस प्रकार बनने का प्रयास करते हुए विश्वामित्र करते वो ब्रह्म ऋषि बन गया। ब्रह्म ऋषि बनने के पीछे कारण क्या है? गाय, गाय का आशीर्वाद मिला। गाय से भले ही लात खाया कौन? विश्वामित्र, लेकिन ब्रह्म ऋषि बना। एक जगह ऐसा कहा गया है क्योंकि गाय के वजह से विश्वामित्र को ठेस पहुंचा, ये गाय का आशीर्वाद, गाय का चरण धूलि प्राप्त हुआ विश्वामित्र को, इसलिए उनको क्षत्रिय क्षत्रिय से ब्राह्मण का प्रमोशन हुआ। तो गाय क्या प्रदान नहीं कर सकती बताइए? जो कृष्ण प्रदान कर सकते हैं हम सबको, वो सारे चीजें गाय प्रदान कर सकती है। यानी कृष्ण ने अपना जो चीजें जो भी हैं वो सब गाय में प्रदान रख दिया है। आप आध्यात्मिक प्रगति के या भौतिक प्रगति के सब कुछ गाय के अंदर है। लेकिन जब इस गाय को शोषण करना चाहते हैं तब वो गाय जो है उस व्यक्ति का बर्बादी का कारण बनता है। गाय अपने आप देती है, माँ जो है बच्चों को अपने आप देती है, वो बच्चे को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन वो बच्चा बड़ा होके या कोई कूद की वजह से माँ का शोषण करना चाहता है तो वही माँ जो है उसी प्रकार का विचार जो है उस बच्चे का वो विनाश का कारण है। तो गाय देती है, वो अपने आप से देती है। आप इतना सारी चीजें देती हैं कि हम लोग सोच भी नहीं सकते, विचार भी नहीं कर सकते, लेकिन हम उनसे एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं कुछ जल्दबाजी में, नहीं मुझे ये चाहिए करना चाहते हैं, तब वही विनाश के कारण बनते हैं। तो ये कार्तिकवीर अर्जुन भी समझ गया गाय संपत्ति है। भौतिकवादी भी सोचते हैं कि गाय संपत्ति है, और जो वैदिक ज्ञान है आध्यात्मिकवादी भी सोचते हैं कि गाय हमारी संपत्ति है। लेकिन दोनों की विचारधारा में अंतर है। आजकल गायों की हत्या हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि भौतिकवादी जानते हैं जो गाय की हत्या करते हैं वो जानते हैं जितना मुझे धन गाय से मिलता है वो कोई अन्य जानवर से नहीं मिलता है। अन्य कोई भी कंपनी खोलिए, कोई भी बिजनेस है, कोई भी व्यापार है, जितना गाय से मुझे संपत्ति मिलता है, धन मिलता है, उतना कोई और व्यापार से नहीं मिलता। आज के भारत में 1,00,000 करोड़ का व्यापार होता है गाय की हत्या के ऊपर आधारित होकर हो। ऐसा कोई कंपनी नहीं है, ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं है जो गाय के बिना वो चल सके। तो ये भौतिकवादी लोग भी जानते हैं कि गाय मेरे हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इससे उसको मारो, मार के उससे पैसा कमाओ। और जो वैदिक सभ्यता के अनुसार वो भी जानते हैं गाय हमारी संपत्ति, इससे क्या करो, उसको देखभाल करो। तो भौतिकवादी भी सोचते समझ, उनको भी मालूम है गाय से मुझे ज्यादा धन मिल सकता है, इससे उसको मार के धन दो। और वैदिकवादी वैदिक सभ्यता के अनुसार उसको देखभाल करके उसको धन दो। जैसे एक आपको स्टोरी मालूम है, एक घर में एक मुर्गी थी, रोज के अंडे देती, उससे उनका घर ऐश्वर्य से भरा हुआ था। तो पति को कहीं जाना था, पत्नी को कहा कि मुर्गी को अच्छी से देखभाल करना, क्योंकि उससे रोज हमको एक सोने के अंडा मिलता है। तब ये मुर्गी ने, ये पति चले गए तो पत्नी ने सोचा रोज सोने के अंडा मिल रहा है, वो कहां से मिल रहा है, उसके पिछले भाग से मिल रहा है और आगे की भाग से नुकसान है, पीछे भाग से फायदा है, आगे की भाग से नुकसान। दूसरी बात है, अभी उसको काट के खाने का जो मजा है, जो सोने की अंडा देने वाली मुर्गी को काट के खाने का मजा है वो नहीं है। चलो अंडा तो पीछे भाग से आ रहा है, उसको बीच में काट दिया, पिछला भाग को रख दिया और आगे का भाग को काट के खा लिया। अगला दिन देख रही है सोने के अंडा, कहां से मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये स्त्री ने इस प्रकार क्यों किया, क्योंकि लोभवश किया। लोभ है, जब किसी के अंदर लोभ आता है, वो लोभ के वश कोई संपत्ति को ग्रहण करता है, वो संपत्ति उसका विनाश का कारण होता है। अगर हमारी पालन पोषण के लिए कोई चीज को ग्रहण करता है, वो जो संपत्ति है वास्तविक संपत्ति माना जाता है। ये लोभ इतना खतरनाक चीज है, इतना भयानक चीज है, वो लोभ के द्वारा प्रयास करके प्राप्त किया संपत्ति हमारा बर्बादी का कारण है, हमारा बंधन का कारण है, हमारा विनाश का कारण है। आजकल लोग संपत्ति कमाते हैं लेकिन वही संपत्ति उनका दुख का कारण बनता है, उनका बर्बादी का कारण बनता है। क्यों? क्योंकि लोभ से प्रेरित होकर उन्होंने संपत्ति ग्रहण किया। जो लोग लोभ से नहीं बल्कि अपने शरीर को व्यापन करने कुछ चीजों की जरूरत है तो अपने आप से जो आता है दैवी योजना से जो आता है उससे वो संतुष्ट हो जाते हैं। वो संतुष्टि नामक जो धन है, वो संतुष्टि नामक जो वास्तविक धन से जो ऐश्वर्य प्राप्त होता है, वो ऐश्वर्य जो है सुख प्रदान करता है। इसलिए आप देखिए लोभी लोग होते हैं वो उनका धन जो है उनका दुख का कारण है। जो संतुष्ट लोग होते हैं उन वो भी धनी हो सकते हैं, संतुष्ट लोग भी। ये गलत विचार है ये सोचना कि अगर मैं संतुष्ट हूं मुझे धन नहीं मिलेगा। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो अपने से संतुष्ट है लेकिन बहुत धनी है, उनको खुद को मालूम नहीं कितना पैसा है। क्यों? क्योंकि उनके पास संतुष्टि नामक धन है, उसकी वजह से उनसे संतुष्ट व्यक्ति को जो धन प्राप्त होता है वो धन नुकसान का कारण नहीं है। हम परसों महाराज की क्लास से सुन रहे थे किस प्रकार एक भौतिकवादी होता है उसके लिए संपत्ति उसका नुकसान का कारण है, लेकिन आध्यात्मिकवादी होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, उनके लिए संपत्ति जो है उनका आध्यात्मिक प्रगति का कारण है। क्यों? क्योंकि उस संपत्ति की वास्तविक इस्तेमाल जानना, वो इस्तेमाल कैसे करना चाहिए वो जानते हैं। तो इसलिए ये जो संपत्ति है गोधन है, वास्तविक धन है। ऐसा मत सोचिए कि भौतिकवादी नहीं जानते गाय वास्तविक धन है, वो नहीं जानने वाले वो तो महामूर्ख है। गाय ही वास्तविक धन है। चलिए भौतिक दृष्टिकोण से जो आजकल लोभवश होके गाय को संपत्ति के रूप में जानने वालों की मनोभावना क्या है, गाय को मार के गाय की संपत्ति हम पैसा बनाएंगे। क्योंकि गाय का विषय में है तो वो श्लोक, इस श्लोक में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, सवत्सान क्रंदंतीम बलात्, क्रंदतीम बलात्, सवत्सान क्रंदतीम। कार्तवीर अर्जुन ने कहा उनके सैनिकों को, आप ये गाय और उनके बछड़े के साथ मेरे राज्य में लेके आइए। जब वो राज्य में लेके आ रहे थे गाय क्या कर रही थी? क्रंदतीम, रो रही थी, क्योंकि उनको मालूम है ये कार्तिवीर अर्जुन मुझे लेके जा रहा है, लेकिन किसके लेके जा रहा है? मुझे शोषण करने के लिए लेके जा रहा है। अगर मुझे शोषण लेके जाएगा मेरा निश्चित रूप में मेरा वध होने वाला है, मुझे मारने वाला है। क्रंदतीम बलात्, बलपूर्वक उनको लेके गया। उसी प्रकार तो आजकल जितने भी बड़े बड़े जो कत्लखाने हैं उसके पीछे बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनके अंदर इतना लोभ है। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा कौन सा व्यापार है जिसके द्वारा मैं जल्दी से जल्दी पैसा बना सकूं। ऐसा कोई चीज है आप 5 रुपए में खरीदो, कोई चीजें 5 रुपए में खरीदो और उसको 10 गुना में तुरंत बेचो, उसके ऊपर 2 रुपए का खर्चा करो, 5 रुपए का एक चीज लो, 2 रुपए का खर्चा करो उसके ऊपर और उसको 50 रुपए में बेचो। ऐसा कोई व्यापार है? कोई भी व्यापार को ये बात नहीं मालूम कि ऐसा कोई व्यापार हो ही नहीं सकता। 5 रुपए का चीज ले सकता है, उसके ऊपर 2-3 रुपए खर्चा कर सकता है, मुश्किल से 10-12-15-20 रुपए में बेच सकता है। अगर मान लो कोई ऐसा कोई वस्तु है जो 50 रुपए बिके लेकिन इतना क्वांटिटी में बिके, ऐसा कोई हो? ऐसा कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई व्यापार नहीं है। पूरा भारत में एक ही व्यापार है जो इस प्रकार, क्या व्यापार है? गाय को मारने की व्यापार। 5,000 में गाय मिलती है, उसके ऊपर 2,000 रुपए खर्चा करो उसको मारने में, उसको जो भी करने में, उससे जो निकलती है वो 50,000 में बिकता है। अब इसलिए गाय कट रही है। जो गाय काटने वाले जो हैं वो मांस के लिए नहीं काट रहे हैं, उसके पीछे बहुत बहुत से हैं जो ये पूरा संसार चलाने के लिए, ये जो आजकल दुकानों में मिलती हैं वो सबका प्रोडक्शन होने के लिए गाय कटना आवश्यक है। या बाजार में आप साबुन खरीदते हो, जब तक गाय नहीं कटेगी वो साबुन नहीं बिकेगा, 100% सत्य है। असत्य में जो साबुन हम खरीदते हैं मार्केट में उसके अंदर गाय का खून है, क्योंकि जब तक वो घटिया नहीं तो साबुन ही नहीं मिलेगा। हम लोग रोज टूथ पाउडर वापरते हैं, टूथ पेस्ट वापरते हैं, क्या है उसके अंदर क्या है? जब तक गाय नहीं कटेगी हड्डी नहीं मिलेगा, हड्डी नहीं मिलेगा वो नहीं बनेगा, टूथपेस्ट नहीं बनेगा। जितने भी कॉस्मेटिक लेदर आप जो इंडस्ट्री बोलिए, और सबसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्री जिसके द्वारा सब लूटा जा रहा है, खुलेआम लूटा जा रहा है, क्या है वो? दवाइयों का फार्मेसी इंडस्ट्री। उसके अंदर गाय का खून लगता है, गाय के अनेकों अनेकों तत्व लगता है, गाय का शेर भी लगता है। आप भूल जाइए, हम लोग बोलते हैं आजकल घी का चल रहा है, आपको 95% जो घी मार्केट में मिल रहा है भी, उसके अंदर गाय का चर्बी है। लोग गाय दूध दे रही है, वो दूध को निकालो और उसको धीरे धीरे से गर्म करो, उससे जो मक्खन मिलता है वो मक्खन को पिघाल के फिर घी बनाओ, बहुत मेहनत है ना, सीधा गाय को मार दो और इसकी चमड़ी से चर्बी निकलता है और उसको घी करके पूछ बेच दो, ये लोभ है। ये लोभी व्यक्ति क्या सोचता है कि मुझे जल्दी मिल जाए धन। धन प्राप्त करने का प्रयास जो है उस पर कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन लोभवश जो पुकारता है उस पर तकलीफ है। तुम्हें कलयुग में क्या चीजें, हर चीज इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट इडली, इंस्टेंट इंस्टेंट सब इंस्टेंट, और इंस्टेंट मृत्यु भी हो जाता है। तो ये लोभवश आदमी क्या नहीं कर रहा है सोचिए। वो क्रंदती जो रो रही है गाय, उसी प्रकार आजकल प्रत्येक गाय रो रही है। क्यों रो रही है? क्योंकि मालूम है मुझे कोई कत्ल करने वाला है। मैं बताना चाहता हूं कि कत्ल कैसे होता है गाय का। पहला जब आंदोलन हमारा देश का आजादी हुआ था, हमारे संविधान में पहले की बात है कि गाय को मारना गुनाह है, बहुत स्ट्रिक्ट लॉ था, क्योंकि इसके पीछे एक वैष्णव का हाथ है। भले ही नाम लिखा जाता है कोई इसने कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान बनाया, उसके पीछे एक वैष्णव का हाथ है। उन्होंने सोचा कि बर्बाद तो होने वाला है सारा देश, लेकिन कम से कम ये दो चीजों के ऊपर मैं पाबंदी लगाता हूं, और भी दो तीन चीजें हैं। एक श्री वैष्णव का हाथ है राजा गोपाल आचार्य, उन्होंने पूरा एक कन्वर्जेशन है, बहुत सारे लोगों का कर दो ये गो हत्या और शिशु की हत्या जो है गर्भ में, उसको आप कानून में लागू कर दो। कहा नहीं, संविधान में बनाया था गो हत्या नहीं हो सकता है कि जो गर्भपात जो है वो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ समय तक कुछ चला, गाय की हत्या नहीं हो सकती, कत्ल भी करते थे चुपचाप करते थे। लेकिन बाद में कोई आई आके क्या किया, नहीं गाय की ही कत्ल कर सकते हो, क्योंकि बेकार जानवर होता है ना जो बीमार है, उनको आप हत्या कर सकते हो, कोई काम का नहीं है, कम से कम उसको काट के कोई खाएगा तो, क्योंकि दूध तो देने वाले नहीं है वो, या बीमार हो गई है वो दुखी है, अभी इतना शरीर में थोड़ा बीमारी हो गया है, अभी उसको मार दो तो वो सारा दुख खत्म हो जाएगा, कोई ऐसा सोचता है? मान लीजिए आपकी माँ है बहुत बीमार है, अभी उसी दिन में मृत्यु भी आने वाला है, बहुत दुख दर्द है, लेकिन क्या आप अपनी चाकू से उसको मार दोगे? क्योंकि गाय हमारी माता है, इस बात को भूल गए लोग, या इस बात को जानते नहीं है, इस बात को अनुभव नहीं करते, इसलिए वो मारते हैं गाय को। आप कृष्ण बुक खोलिए, प्रभुपाद ने सबसे पहले यही बात लिखा है, हमारी सात माताएं, भगवान के प्राकट्य के पीछे भी गाय का हाथ है। पृथ्वी माता भले ही माता होने पर भी वो गाय का रूप धारण की, क्यों? कि सात माताओं में सर्वश्रेष्ठ माता कौन है? गाय हमारी माता है। बोल सकते नहीं हमारी तो मां है, अगले जन्म में कौन कोई और मां था आपका, पिछला जन्म में कोई और मां था, आगे कोई और मां होगा। गाय हमारी शाश्वत माँ है और हर गाय माँ हो सकती है। नहीं बोल सकते नहीं नहीं पृथ्वी भी है, पृथ्वी को भी पोषण करने वाली गाय है, इतना ही नहीं। कोई बोल सकते नहीं नहीं कुछ और भी है, और गाय गुरु की पत्नी है, लेकिन आपकी जो गुरु की पत्नी है वो भी आपकी गुरु है, लेकिन दूसरे के लिए उनकी गुरु की पत्नी उनके लिए माँ है, लेकिन गाय हरेक गाय हरेक व्यक्ति के लिए माँ है। ये जो सिस्टम कोई और का नहीं है, इससे गाय का विशेषता है। इस बात को भूल गए इसलिए सोचते हैं कि गाय बेकार हो गई इसको मार दो। अभी ये लॉ इस प्रकार का एक कानून पास किया गया था, बीमार गाय को मार सकते हो। अभी ये कानून इतना भयानक हुआ, इतना भयानक उसका नतीजा हुआ, अभी अच्छे अच्छे गाय को बीमार किया जाता है सबसे पहला। और कैसे बीमार किया जाता है, उसको लेके एक ट्रक में डाल देंगे और लेके जाने के समय गाय इधर उधर उलके उनके सींग एक दूसरे को लग के पूरा शरीर में घायल हो जाता है, और रास्ते में इसको टांग तोड़ दिया जाता है, और आंख में ऐसे डालकर उसको अंधा बना दिया जाता है, और उसको 5-6 दिन भूखा रखा जाता है, बेहोश हो जाती है, फिर वापस उसको होश में लाया जाता है कुछ इंजेक्शन देके। जब वो गाय जाती है वो डॉक्टर के पास, उस डॉक्टर को एक गाय को पास करने के लिए क्वालिफाइड फिट फॉर स्लॉटर एक सर्टिफिकेट है, उसको साइन करने के लिए डॉक्टर को 500 रुपये मिलता है। सत्य है। जब वो जाती है गाय कहाँ, कतलखाने में, कतलखाने में जाती है, सबसे पहला क्या करते हैं, जो मेडिकल इंडस्ट्री में गोवाइन करके एक एक तत्व है, उसका नाम ही गोवाइन है, उसको डाले बिना कोई टॉनिक नहीं बन सकता, बहुत कम टॉनिक है जो गोवाइन के बिना है। या आजकल कुछ ऐसे टॉनिक है गोवाइन का नाम लिखते नहीं है, क्योंकि मालूम पड़ गया लोग इसके अंदर गाय का खून है करके लेते नहीं है। जैसे आजकल एक कंपनी निकला है उसके अंदर तुलसी को पूरा मिक्स करके वो डालते, लेकिन उसके अंदर तुलसी नहीं लिखते, पहले लिखते थे तुलसी है करके, उसका अंग्रेजी नाम क्या है, बेसिल ऐसा लिख देते, ताकि मालूम ही नहीं पड़े भारत के लोगों को इसके अंदर तुलसी है, क्योंकि बिक नहीं रहा था। एक कंपनी ने एक दवाई निकला उसके अंदर लिखा था तुलसी, तुलसी तो फिर हरे तुल तो पवित्र है, इसको दवाई के रूप में हम नहीं लेंगे, ऐसा मनोभावना था। तो उससे क्या किया, तुलसी को निकाल के मैंने एक बॉटल देखा जो 5 साल पहले की वही कंपनी का वही दवाई का बॉटल में तुलसी लिखा है, अभी का बॉटल में बेसिल लिखा है, कहीं मालूम ही ना पड़े ताकि उसका बिके। अभी वैसे ही इसी बात के ऊपर दवाई की कंपनी ने क्या किया, नहीं ये गो एन नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसका गो है ना, उसका और एक नाम निकाल के उसने डाल दिया कि हमको अभी मालूम नहीं कि कौन से टॉनिक में कौन सा गाय का खून है कि नहीं। सबसे पहले उसको खून निकाला जाता है, और खून कैसे निकालते हैं उसको वर्णन नहीं कर सकता हूं, इतना भयानक तरीके से निकालते हैं। कुछ जगह वो गाय को सेंट्रीफ्यूज में रख देते हैं ताकि खून जल्दी निकले, सेंट्रीफ्यूज मतलब ऐसा जोर से घूमने वाला रहता है तो तुरंत गाय का खून निकलता है उससे। अभी हमारे अंदर जितने भी खून है खाली 15% खून होने पर भी हम जीवित रह सकते हैं, गाय का भी ऐसा ही, खाली 15% खून रखते हैं वो भी क्यों नहीं निकाले, क्योंकि आगे की जो चीजें हैं जब तक वो जीवित नहीं रहेगा गाय तब तक वो निकल नहीं सकता। तो क्या करेंगे, और गाय के मुंह में ये डालेंगे और पूरा गाय को फुला देंगे गैस से, हवा से, इतना दर्द होता है, आपको थोड़ा सा गैस अगर पेट में घुस जाता है कितना दर्द होता है, जिसको वात का या गैस का प्रॉब्लम मालूम है सो नहीं सकते, हालत खराब हो जाता है। पूरा गाय के शरीर को फुला देते हैं अंदर हवा भर के, और उनको दूसरे कंपार्टमेंट लेके जाता है, उधर 250 डिग्री सेंटीग्रेड का भाप छोड़ते हैं उसके ऊपर, ताकि उसके अंदर जो बाल हैं वो सब निकल जाए, गाय भी जीवित है, और तब उसका चमड़ी निकालते हैं, क्योंकि जब तक वो बाल है या गैस नहीं जाता तब तक चमड़ी नहीं निकलता है, अभी भी गाय जीवित है। क्योंकि मरने के बाद अगर उसको चमड़ी निकाला जाए वो चमड़ी जो है इतना अच्छा नहीं होता है, ऐसा उनका मंतव्य है। और जितने पर्स मिलते हैं, शूज मिलते हैं, हर जगह गाय का लगता है। जो गाय का चमड़ी से बना हुआ जो चीजें हैं वो तीन गुना महंगा है। आप कोई पर्स की दुकान में जाइए, कुछ पर्स होता है मान लीजिए कोई और सूटकेस से जो भी चीजें हैं, जूते हैं, अगर मान लो कि आपको एक चीज 500 रुपये मिल रहा है और वैसी दिखने वाला आप बोलेंगे 1000 रुपये है, क्यों मालूम है? गाय का चीज से बना है, क्योंकि वो चमड़ी जो हमेशा सॉफ्ट रहता है, बाकी सब चमड़ी जो है इतना सॉफ्ट नहीं रहता है और इतना टेंसाइल स्ट्रेंथ भी उतना नहीं रहता बाकी गाय का चमड़ी का जितना होता है। देखिए पहला गया उनसे इंडस्ट्री में दवाइयों का इंडस्ट्री, बाद में लेदर इंडस्ट्री, बाद में पाउडर हड्डी, अभी मर गया गाय हड्डी लेके उसको तोड़ा जाता है, उसको चूर्ण किया जाता है और उसको बेचते, कहां जितने भी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है उसमें बेचते। जब हम लोग कॉस्मेटिक्स खरीदते हैं हर चीज में कहीं ना कहीं गाय का तत्व है और उसके लिए मारा जाता है। यानी जो चीज हम बाजार से खरीदते हैं, एक एक चीज जो कॉस्मेटिक के हिसाब से हो, दवाई साबुन के हिसाब से हो, कुछ भी खरीदते हैं, उसके पीछे गाय का एक मृत्यु है। यानी आपने एक टूथपेस्ट खरीदा, इसका मतलब है आपने गाय का, एक गाय का मारने के पीछे आपका हाथ है। ये आगे जाके देखिए, अभी उसका चर्बी निकालते हैं। ऐसा कहना है कि आजकल जितने भी घी मिल रहा है मार्केट में, उतना घी को प्रोड्यूस करना है हमारे पास उतनी गाय नहीं है। ऐसा कहा गया है कि करीबन 20 लाख गाय बचे हैं, उसके अंदर 7-8 लाख गाय जो है दूध दे रही है। अगर मान लीजिए सारे जो दूध, गाय का दूध अगर निकालेंगे उसके अंदर से घी बनाएंगे, तो अभी जो मार्केट में मिल रहा है घी के नाम पे, गाय का घी नाम मिल रहा है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए कम से कम जितने गायें हैं उसके 1000 गुना गाय चाहिए। लेकिन ये घी कहां से मिल रहा है? आगरा अन्य अनेकों जगह पकड़ा गया, वो गाय का हड्डी को उबालते हैं 500 डिग्री 600 डिग्री लेके जाएंगे, वो हड्डी से चर्बी निकलता है और उसको घी के रूप में भेजते हैं। इस श्लोक में आया है वर्ड हविर धनीम, हविर धनीम यानी हवि, हवन में जो घी की आवश्यकता है उस घी को प्रदान करने वाली गाय है। लेकिन वो घी को प्रदान करती हैं, लेकिन गाय ने कभी नहीं कहा कि मुझे मार के मेरे हड्डियों को उबाल के घी बनाओ। ये क्यों बना रहे हैं? लोभ। क्योंकि रोज गाय तो 5-6 लीटर दूध देती है, उससे कितना घी बनता है? इतना ही बनता है, चलो उसको मार दो इतना घी बन जाएगा। वही कहानी है, मुर्गी को मार दो आगे मिलेगा। लोभ, लोभ के वजह से व्यक्ति क्या क्या नहीं कर रहा है, मनुष्य समाज क्या नहीं कर रहा है। सबसे बड़ा अत्याचार गायों के ऊपर हो रहा है लोभ की वजह से। ठीक है किसी को मारा, भाई का संपत्ति हड़प लिया या कुछ किया, वो अलग बात है, वो सब चीजें इतना पाप नहीं माना जाता है। लोभ की वजह से गाय को, जो अपनी स्वयं माँ है, उनको शोषण किया जा रहा है, मारा जा रहा है और हम लोग शांति से बैठे हैं। कैसे कोई सुखी हो सकता है बताइए? रूपा जी लिखते हैं यज्ञ सुखे न भवंती, यज्ञ के द्वारा सब सुखी हो जाए। और यज्ञ करने के लिए गाय की घी की आवश्यकता है, गाय के घी के बिना यज्ञ नहीं हो सकता। नहीं, आप बोले प्रभु जी हमारा तो संकीर्तन यज्ञ है, उसमें घी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यज्ञ मतलब यह नहीं कि यज्ञ में ही आहुति होता है। हम लोग जो प्रसाद ग्रहण करते हैं वो भी यज्ञ है। जो वैष्णव प्रसाद ग्रहण करता है, हम लोग जब खाते हैं वो क्या हो रहा है? वो भी यज्ञ है, क्योंकि हम भगवान पेट में क्या है, किस रूप में है? जठराग्नि के रूप में है। और हम लोग अंदर क्या डाल रहे हैं? क्या डाल रहे हैं? डालडा, हाँ, और क्या क्या है वो, ये रिफाइंड ऑयल, हाँ, भगवान पे पसंद है? बिल्कुल पसंद है। गर्दिश्पू है कि नहीं इधर? ये सब फालतू चीजें है। असलियत में जब आप वैष्णव को खिलाते हैं, ये ब्राह्मण भोजा है अभी श्राद्ध के समय और अनेक अनेकों क्या वो पुरुषोत्तम मास के समय ब्राह्मण भोजन हो रहा था, तो ये असलियत में वास्तविक यज्ञ है। ये रियल यज्ञ शास्त्र में बिल्कुल कहा गया है सत्य। भगवान स्वयं कहते हैं, अनंत देव कहते हैं, जितना मैं जब ब्राह्मण के उदराग्नि को शांत करने के लिए जो हवन किया जाता है, उस हवन से मैं जितना संतुष्ट होता हूं, अन्य हवनों से उतना संतुष्ट नहीं होता हूं। ठीक है, उधर क्या डाल रहे हो उस ब्राह्मण के मुख से, ये भी हवन है। तो संकीर्तन आंदोलन है प्रभु जी, उसमें तो घी की जरूरत नहीं है, अपना साथ की बिना संकीर्तन करोगे अवश्य। ठीक है, हम स्वाहा स्वाहा नहीं करते, लेकिन रोज ये स्वाहा तो हो ही रहा है, वो भी स्वाहा स्वाहा, क्योंकि अगर घी अंदर जाएगा तो काम करेगा, नहीं तो डालना जाएगा तो क्या होगा, जंग पकड़ेगा। वेरी केयरफुल, बहुत जरूरी है। जितना हमारा बुद्धि तेज होगा, उतना हमारा अच्छा जप होगा, उतना अच्छा शास्त्र को समझ सकते हैं, उतना शास्त्र को बता सकते हैं, और हर चीज अच्छा हो सकता है। घी के बिना कोई आध्यात्मिक जीवन हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। घी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए दक्षिण भारत में आप जाइए, जहां पर पंचरात्र विधि होता है, श्रीरंगम में भी, अनेक मंदिरों में सबसे पहला भगवान की का दर्शन करते हैं। दरवाजा खुलते ही सबसे पहला भगवान का दृष्टि जो है किसके ऊपर है, गाय के पिछले भाग जो है उसके ऊपर है। क्यों? क्योंकि भगवान सोचते हैं कि मैं गाय का पिछले भाग को देखूंगा तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मंगलमय भगवान को मंगल करने वाला गाय है, गाय के पिछला भाग। क्यों पिछले भाग? क्यों? क्योंकि गाय के पिछले भाग से बछड़ा निकलता है, जब बछड़ा निकलता है गाय दूध देती है, जब दूध मिलता है तो अन्य वैष्णव ब्राह्मण उसको ग्रहण कर सकते हैं, उसे घी ले सकते हैं, उनका बुद्धि तेज हो सकता है। जब बुद्धि तेज है तो इंद्र शक्ति को नकारना और शास्त्र को पढ़ने में उनका होशियार हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है। डालडा खाने से, रिफाइंड ऑयल खाने से बुद्धि जो है मंद हो जाता है, भैंस का घी खाने से भी मंद हो जाता है बुद्धि, तमोगुण में चिर जाता है। लेकिन गाय का दूध पीने से, गाय का जो घी खाने से बुद्धि तेज होता है, हमने एक्सपीरियंस किया है। पिछले कुछ महीनों से हमारे आश्रम में गाय का दूध आ रहा है, तो इसलिए मैं देखा हूं कि लोग एक बार में समझ जाते हैं जो भी बोलूं। पहले दूध आता था जर्सी गाय, वो तो जर्सी गाय तो गाय ही नहीं है, वो तो सुअर है वो दूध जब पीते थे सब बीमार पड़ते थे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाता था, कुछ बोला तो हाँ करके बोलते, कुछ समझ में नहीं आता था। अरे हमारे नए भक्त है एकदम ब्राइट है, एक बार बोलने समझ जाते हैं। पहले भक्तों का ट्रेनिंग होता था, 10 बार बोलने के बाद भी आया करके देखते थे, क्योंकि भैंस को आप कितना भी बोलो क्या समझ लेगा, जैसा दूध पियोगे ऐसा। कमिंग बैक टू द पॉइंट, गाय की ऐसी हत्या हो रही है। प्रभु की तीसरे श्लोक में तात्पर्य में गोरक्षा करते हैं। गोरक्षा मतलब ये नहीं कि आप गौशाला खोलो, जो पहले से खोल के रखा है गौशाला उनको सपोर्ट करो, क्योंकि गाय को क्यों मारा जा रहा है, लोभ की वजह से मारा जा रहा है। लोभ मतलब धन, आर्थिकता की वजह से गाय को मारा जा रहा है, गाय को रुलाया जा रहा है पैसे के लिए। अभी उसी व्यक्ति को जो पैसे के लिए गाय को मार रहा है, उसकी जो पैसा है उसको खत्म करना है, उसके लिए सामने क्या करना होगा, हमको गाय की रक्षा करना है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति गाय को खरीद रहा है 5,000 रुपए में, किसके लिए? मारने के लिए। एक व्यक्ति गाय बेचने के लिए तैयार है, एक व्यक्ति मारने के लिए 5,000 रुपए, तो आप उस गाय को रक्षा करने के लिए क्या करोगे? आप मैं 7,000 देता हूं, एक गाय मुझे दो, करना ही पड़ेगा है कि नहीं? नहीं तो उसको समझाना पड़ेगा, तुम 5,000 में इसको बेच रहे हो, अगर तुम इस गाय को अच्छी तरह से पालन करोगे, देखभाल करोगे, आपको हर महीना 5,000 मिलेगा, अच्छा वो सोचे ऐसा है क्या, तो मैं नहीं बिकूंगा, क्योंकि गाय जो है उसको काटने वालों का कसूर नहीं है, जो बेचने वाला उसका कसूर है। आप जाके देखिए, गाय की बात छोड़िए, भैंस की बात ही करता हूं मैं, जितने भी तबेले में इतने सारे भैंस मिलते हैं, आपको भैंसा कभी नहीं मिलता है क्या? कब केवल वो बच्चियों को ही देती है क्या जन्म? वो बच्चा को क्या होता है? बच्चा को दूध नहीं देते, दूध नहीं पिलाते उस बच्चे को, दूध नहीं पिलाते, 10-15 दिन ऐसे ऐसे करके उसको मार देते हैं, कटर में फेंक देते हैं। गोलबंदर रोड में रास्ते में जाइए, एक बहुत 500-600 मीटर तक जगह है, बदबू आता है उधर, कहाँ आता है वो, पहाड़ के ऊपर से फेंक देते हैं। जितने छोटे छोटे बच्चे हैं ना, पूरे से, क्योंकि बड़ा होने के बाद दूध तो नहीं देती। ऐसे आजकल पेपर में खबर मिल रहा है, हर जगह न्यूज है कि स्त्रियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अगर गर्भ में पता लग जाता है ये बच्ची है तो उसको मार दो, क्योंकि हमको लड़का चाहिए, लड़की नहीं चाहिए। अभी गायों के साथ भैंसों के साथ अलग व्यवहार है, अगर लड़का है अंदर उसको मार दो, क्योंकि इससे दूध नहीं निकलता है। आप देखिए, वो बच्चा जो है जब तक दूध के लिए माँ के पास नहीं आता तब माँ दूध नहीं देती है, भैंस तो दे देती है, भैंस मोड ऑफ इग्नोरेंस है, लेकिन गाय का बछड़ा है जब तक वो बछड़ा नहीं आता तब तक दूध नहीं देती। तो क्या करते हैं मालूम है? वो बछड़े को मार के उसका मुंह को अंदर कुछ भर के उसको एक ऐसा एक डॉल बनाते हैं और उसको ऐसा दिखाते, देखो, तो वो भैंस जो है दूध देना शुरू करता है। अब क्या क्या कर रहा है व्यक्ति, देखिए हम किस समाज में निवास कर रहे हैं। अगर सोचेंगे तो बख्शन ठाकुर ने कहा कि दिस वर्ल्ड इज नॉट ए प्लेस फॉर ए सेन मैन टू लिव। एक बुद्धिमान, ये एक सज्जन व्यक्ति के लिए रहने लायक स्थान ही नहीं है, इससे निकल जाना है। केवल पागल ही रह सकता है इस जगत में, सच्चे हॉरिबल प्लेस। तो गाय को इस प्रकार रुलाया जा रहा है। तो मैंने जैसे कहा, गाय की रक्षा करना है, गाय की आंखों से आंसू नहीं टपकने दे रहा, उसको खुश रखना है। ऐसा नहीं कि गौशाला में गए, वो गाय को थोड़ा घास खिला दिया, गो सेवा हो गया, वापस आके आप वही कॉस्मेटिक लगे जिसके द्वारा जो गाय के खून से बना है, उससे बोले गो सेवा होता है। 1 लाख रुपए का डोनेशन दिया हमने गौशाला में, और घर में क्या वापर रहे हो? साबुन वापर रहे हो जिसमें जिसके जिस जो गाय के चर्बी से बना हुआ है। क्या फायदा आपका डोनेशन का, आप अपने पास रखो। तो गाय को रक्षा करना है, रुलाने नहीं देना है, गाय की वास्तविक महिमा को जानना है। वो हमारी माँ है, माँ बच्चे को देखभाल करती है, बच्चा माँ को देखभाल करता है, कौन किसको देखभाल करता है? माँ बच्चे को देखभाल करती है, ये जानो। मैं गाय को देखभाल करने वाला होता कौन हूं? गाय मुझे देखभाल कर, हर मामले में, हर चीज में। आध्यात्मिक विद्या चाहिए, विद्या देती है गाय। अब बुद्धि चाहिए, बुद्धि देती है। क्या चीज नहीं देती है? दवाई चाहिए, दवाई देती है। हर चीज देती है गाय, काम देनो है। गोलोक में निवास करने वाले गायों का ही विस्तार है गाय जगत के। तो एक जगह मैं ऐसे प्रवचन दिया था, उसके बाद एक व्यक्ति आया, प्रभु जी मैं अपनी सोसाइटी में गाय रखूंगा। मैंने बोला कि ये तो आप कर नहीं सकते हो, पहले आपके घर में जाके वो टूथपेस्ट फेंको, साबुन फेंको, जितने भी कॉस्मेटिक है वो सब फेंको, और क्या करो, गाय का प्रोडक्ट वापरो, यही गाय गोरक्षा। क्योंकि आप जितना गाय के प्रोडक्ट वापरेंगे उतना पैसा जो है एक किसान को मिलता है, और किसान को जैसे मन पड़ता है कि ये गाय के प्रोडक्ट से मुझे गाय रखने से फायदा हो रहा है, तो गाय को बेचेगा नहीं। जब गाय को नहीं बेचेगा तो उसको मारने के लिए कहां मौका मिलेगा? और दूसरी बात, आप जब टूथपेस्ट या अन्य चीजों को खरीदना बंद करोगे तो उनका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, उनका सेल कम हो जाएगा, सेल कम होगा प्रोडक्शन भी कम होगा उनका, तो धीरे धीरे गाय की रक्षा हो सकती है। गाय को रक्षा करने का अर्थ है कि हमारी आध्यात्मिक जीवन का भी रक्षा करना और अन्य सारे संसार का आध्यात्मिक जीवन का रक्षा करना। जिससे प्रभुपाद जी लगते हैं कि यज्ञ सुखेन भवन्ति। यज्ञ का अर्थ क्या है? यज्ञ का अर्थ यही है कि हवन, घी, वो घी कहां से मिलती है? गाय से मिलती है। प्रभुपाद जी दो श्लोक को कोट करते, बड़ा सुंदर श्लोक है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। लोग सोचते हैं कि हम प्रकृति को कंट्रोल करेंगे, लेकिन प्रकृति भगवान के नियंत्रण में, हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम जितना प्रकृति के अंदर दखलंदाजी करने जाएंगे, उतना हम बर्बाद होते जा रहे हैं। इसलिए हफ्ते से मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि मैं गया था कलासरी फार्म में, उधर ने कहा प्रभु जी हमने 1,500 किलो गेंदा उगाया है, जू मंदिर भेजा है। वैसे मैंने कहा प्रभु जी आप ये गलती मत करो, मुझे एक गेंडा दो, मुझे 1,500 गेंडा की जरूरत नहीं है, मुझे एक रोज फ्लावर दो जिसके अंदर से सुगंध आए। क्योंकि भक्ति रसामृत में कहा गया है भगवान को ये वही फूल अर्पण करना चाहिए जिसके अंदर सुगंध है। अब है देखिए, मैंने कहा सबसे महत्वपूर्ण है आप ध्यान लगाओ बीज लेके आओ। यदि 50 साल पहले या मेरे बचपन में मैं जो रोज देखा था, अगर उसको कोई और कमरे में कहीं भी रखो अभी जब तक सुगंध आता है। 10 साल पहले वृंदावन जाते थे आप, गेट के सामने से गुजरो क्या आता था? सुगंध आता रोज का। अभी जाओ आता है प्रभु जी? तो भक्ति सामर्थ्य में कहा गया है कि भगवान को सुगंधित पुष्प अर्पण करना चाहिए। कोई सोच रहा है इसके बारे में? क्योंकि वो रोज का बीज लेंगे। मैंने पूछा, मेरे कजिन है बहुत सालों के बाद, उनको मैं फोन में बात किया, उनका नंबर लेके, वो सीड डिपार्टमेंट में है, सीड कंपनी में PhD किया था रक्षा से। मैंने पूछा मुझे ऐसा बीज चाहिए जो हमको 40-50 साल पहले मिलता था, जिसके अंदर से शुद्ध चीजें निकलती थी, तो सुगंधित पुष्प आते थे और जो फल है जिसके अंदर मिठास थी। मेरे घर में एक पपाया पेड़ था, उसके अंदर छोटा छोटा ऐसे ऐसे पपाया निकलते थे, कोई ऐसा टेढ़ा मेढ़ा निकलता, लेकिन वो खाने के बाद शक्कर खाओ तो शक्कर फीका लगता है। ठीक है, अभी ये जो सुंदर सुंदर पपाया निकलता है रोज के लेके आते, उसके अंदर सुगंध क्यों? तो मैंने उनसे पूछा क्या है, क्यों है? उसने कहा कि हमने बर्बाद किया है। तुमने क्यों ऐसा किया? क्योंकि हमारे लिए वो अगर उगाएंगे उसके लिए मार्केट नहीं है। अगर सुगंधित पुष्प अगर उगाने जाओगे लगे कि एक एकड़ में मान लीजिए कि 500 किलो निकलता है, अगर उसी को हमने कुछ मॉडिफाई किया, अगर उसको कुछ कृत्रिम तरीके से किया तो क्या होता है, 10 गुना निकाल सकते। लोगों का भी सुगंध नहीं चाहिए, उसको शेप चाहिए बस। ऐसी परिस्थिति में मैंने बोला ऐसा बीज कहां मिलेगा? तो नहीं मिलेगा बीज। आपको चाहिए तो आप कहीं दक्षिण भारत नाम दिया उधर जाके एक एक किसान से जाके मिलो, उनके पास रहा तो आप कुछ बीज लेके आ सकते हो। वैसे गायों की नस्ल भी इतना बर्बाद करके रखे पूरा समाज कि हमको कोई शुद्ध चीज नहीं मिलता है, ऐसी परिस्थिति है। तो बाद में और एक श्लोक करते प्रभु, अहंकार आत्मा करता हम इसमते, लेकिन फिर भी नॉनदलेस ऑल द दे आर फोर्स टू सफर दे थिंक नो हम आर एडवांसिंग। तो प्रभुपाद जी दो श्लोकों में पूरा सार बता दिया भौतिक लोगों का। ये पूरा प्रकृति जो है भगवान के नियंत्रण में है, लेकिन हम उस भगवान के नियंत्रण को भूल के हम अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास करते हुए दखलंदाजी कर रहे हैं। जब हमने दखलंदाजी किया तो रिएक्शन आया, हम लोग बर्बाद हो रहे, लेकिन फिर भी अहंकार वश बोलते नहीं, वी आर प्रोग्रेसिंग, मेरी प्रगति हो रहा है, पीछे से लात खा रहा है, पूछो कैसे हो, फाइन थैंक यू। क्यों कर रहा है? क्योंकि उनका इज्जत का सवाल है कि नहीं? ये साइंटिस्ट और जितने भी भौतिकवादी, उनके इज्जत का सवाल है, इसलिए लोग क्या करते हैं, वी आर प्रोग्रेसिंग, लेकिन अंततः वो क्या कर रहे हैं, खुद भी बर्बाद, सब दुखी है। अहंकार जो इस श्लोक में है, एक शब्द आया है दर्पान, इसका परिभाषा प्रभुपाद दो श्लोक में देते हैं। कृत्रिम तरीके से प्रकृति को नियंत्रण करने के प्रयास में वो दुखी हो रहे, बर्बाद हो रहे, लेकिन फिर भी बोलते हैं हवियात प्रोग्रेसिव। ये अहंकार, अहंकारी व्यक्ति जो है सच को मानने के लिए तैयार नहीं है, उसको मालूम भी मानने के लिए तैयार नहीं है, यह अहंकार है। तो अहंकार जो है अज्ञान का कारण है, ज्ञान को अहंकार उत्पन्न होता है। तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, प्रसंग सब भक्तों से यही निवेदन है भागवतम क्लास में ये सब चीजें मिल रहा है, उसको जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। कुछ दिन पहले महाराज ने क्लास दिया, श्रद्धालु होना, सिंसियर। सिंसियर का अर्थ यही है, अगर सच है मैं करूंगा, वो सही है तो मैं करूंगा, मैं स्वीकार करूंगा उसको, ये सिंसियरिटी है। अगर मान लीजिए मैं कुछ गलत कर रहा हूं, किसी ने आके कुछ कहा ये गलत है ऐसा करो, मुझे जैसे मालूम पड़ा मैं उस गलत करना छोड़ दूंगा और मैं करूंगा। ये अहंकार वैसे नहीं, नहीं मैं सही हूं, मैं बराबर बोलने वाला, ये अहंकार। अहंकार को त्याग करके सिंसियर बनना चाहिए। एक बात रखिए, गो भक्त बने बिना कोई भी व्यक्ति कृष्ण भक्त बन ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। ये ख्यालों में रखिए। प्रभुपाद जी अनेकों अनेकों जगह भागवतम में अपने प्रवचनों में गाय के बारे में वर्णन किया है, गोरक्षा के बारे में वर्णन किया है, क्योंकि उनको मालूम है इसके बिना भक्ति नहीं हो सकता। इसलिए मेरा निवेदन है आप सबसे कि इन सब जातकों के ऊपर ध्यान दीजिए, गौर कीजिए और गो भक्त बनिए, गाय का महिमा जानिए, गो हमारी माता है। इंद्र ने जब अपराध किया किसका शरण लिया? तभी गाय का शरण लिया, तब कृष्ण प्रसन्न हो गए। इसलिए गाय का शरण लेना हमारे लिए आवश्यक। हरे कृष्ण। टाइम हो गया, कोई प्रश्न ले सकते हैं? हाँ यज्ञ यज्ञ में मारना, ये दोनों में अंतर है। और वही शास्त्र में कहा गया अश्वमेधम ग्वालम्बम देवरेण सतोत्पत्ति ये संन्यासम पैतृकम, ये पांच चीजें वर्जित है। हलो पंचम वर्जित, पांच चीजें वर्जित है, उनमें से एक चीज क्या है? गोमेधम। क्यों? क्योंकि पहले जब गोमेध करते थे यज्ञ में, उस समय गाय को तुरंत मनुष्य जन्म प्राप्त हो जाता था, नहीं तो फिर वापस जन्म लेते थे, जन्म मिल जाता था, क्योंकि ये टेस्ट करने के लिए यज्ञ के मंत्र बराबर है कि नहीं, ये दो चीजों में करते थे। लेकिन अभी उस प्रकार का है नहीं, ये है इसलिए। और कोई ठीक? चंद्राश्रम भागवतम की श्रील प्रभुपाद की जय।